चक्षुरुन् मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यानन्दा श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। जस्ट इन बिटवीन द सेशन आई वॉज डिस्कसिंग विथ हिज ग्रेस गिरिराज प्रभु अबाउट सर्टन इवेंट्स दैट हैपेंड लास्ट फ्यू डेज, वेरी इंटेंस इवेंट्स। सो द कंक्लूजन वॉज दैट वी वर डिस्कसिंग दैट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड there is no happiness. Srila Prabhupada used to regularly ask his disciples, new disciples, so are you convinced that there is no happiness in the material world? Are you convinced? So we have to convince ourselves regularly, constantly, huh? We have to regularly, constantly convince ourselves. We have to regularly convince ourselves that there is no happiness in the material world. Constantly we may feel that money will give happiness. This is Maya's biggest trick, you know. Maya will always keep telling you, money will give you happiness. You have to get a little more money. Money will solve all the problems. And money then increases all the problems. You talk about bodily sense enjoyment, we talk about position, we talk about promotion, talk about increment, talk about power, talk about money. There is no pleasure in this. Yena kena prakarena mana krishna niveshayet. Somehow or other, yena kena prakarena, you need to put your mind at the lotus feet of Sri Krishna. Savai Krishna Manapadaravindayo. Only when you do that, you'll be happy. Why? Because Krishna has not invested any happiness in money, in sex, in position, in power, in sense gratification. Krishna has not invested any happiness there. So how will you get it? Unless he has planted, how will you get the crop? There is no crop, there is no seed planted there. But we have to get convinced about it. Otherwise, we will keep struggling life after life, and there will be no happiness. हमको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी अगर हमें ये विश्वास नहीं है कि भौतिक दुनिया में आनंद नहीं है। बाइबल में लिखा है कि अगर भौतिक दुनिया में सुखी होना है तो क्या करना चाहिए? भौतिक दुनिया में अगर सुखी होना है तो क्या करना चाहिए? भौतिक दुनिया में सुखी होने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। यू हैव टू स्टॉप ट्राइंग टू बी हैप्पी इन द मटेरियल वर्ल्ड। दैट्स द ओनली वे टू बी हैप्पी इन द मटेरियल वर्ल्ड। जस्ट स्टॉप ट्राइंग टू बी हैप्पी इन द मटेरियल वर्ल्ड, इन द मटेरियल प्लेटफॉर्म। सो दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मर्सी एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। बहुत ज्यादा कृपा की आवश्यकता है। कृपा करो भरोसो एक तेरो है। कृपा मई भरोसो एक तेरो है। वी ओनली हैव वन फेथ, एक ही हमारा आशा है, एक ही आसरा है कि राधा रानी हमें आसरा देगी, और राधा रानी जब आसरा देगी तो ही हम लोग दुख से दूर होकर सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हाँ, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। जो सब दुनिया में सब जगह ठोकर खाते हैं, राधा रानी उनको सहारा देती है और उन्हीं के जीवन में आनंद का अनुभव होता है। बाकी सारे जो है ना, प्रेम सखी मुयन को मारत, जीतन के संग कहाँ लड़ेगी। दोबारा सुनाता हूँ, प्रेम सखी यानी राधा रानी, हाँ, प्रेम सखी मुयन को मारत, जीतन के संग कहाँ लड़ेगी। अरे जो मुर्दा है, कौन है मुर्दा? ब्रजवासी लोग व्याख्या करते हैं, मुर्दा कौन है? जो कृष्ण को नहीं भजते हैं, जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, वो सब मुर्दा हैं। माया उनको ही मारती है। जीतन के संग कहाँ लड़ेगी? अरे वो जिंदा जो है वो कृष्ण को मानते हैं, उनके साथ माया क्या लड़ेगी, कैसे लड़ेगी? कोई मुकाबला ही नहीं उनके साथ, जो जीवित है। हाँ, जो माया में जीते हैं ना, वो जीवत शव समान, जीवत शव समान, वो मुर्दा जी रहे हैं सब लोग। हमें तो जिंदा होके जीना है, तो मुर्दा जीना नहीं है। जिंदा तभी होते हैं जब राधा रानी और कृष्णों के चरणों में आश्रय प्राप्त करते हैं। यही जीवन का सच्चाई है, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाना है। हाँ, सब दरवाजे पे ठोकर खाना है। इसलिए सब लोग मन की तैयारी करो, अभी हम राधा रानी के पास जाने वाले हैं। हाँ, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तो इस तरह से सब लोगों को ध्यान रखना है कि हम बरसाने जा रहे हैं, सबके प्रेम का सहारा बरसाने में है। श्री बरसाना धाम की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज में कहीं भी जाना इतना आसान नहीं है। ब्रज में जाने के लिए बहुत जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है। ब्रज कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, पिकनिक के लिए जा सकते हैं वहां पर, लेकिन ब्रज में जाना ये आत्मा की यात्रा है। ब्रज में प्रवेश मिलना ये कृपा की बात है। ये टिकट निकालकर और वो ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, रूम बुक करके, यात्रा का पैसा भर के, गाड़ी की व्यवस्था करके, टैक्सी की व्यवस्था करके ब्रज में प्रवेश नहीं मिलता है। ब्रज में प्रवेश कृपा से मिलता है, और वो कृपा जब लाडली जी करती है ना, तभी वो मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। और वो कब कृपा करती है? जब संत हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, जब साधु वैष्णव जन हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तब लाडली जी कृपा करती है, तब हमें ब्रज में प्रवेश मिलता है। और तब ब्रज में प्रवेश मिलेगा बंबई में बैठकर, कुवैत में बैठकर भी मिलेगा। यह इंपॉर्टेंट है समझना। ये सब हमारी जो स्थितियां हैं वो भौतिक स्थितियां हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो है ये भौतिक स्थितियों से परे हैं। इट इज बियॉन्ड द मटेरियल सिचुएशन। इसलिए सब जगह भटक के भी हमको आनंद नहीं मिलता है, तब राधा रानी के दरबार में पहुंच जाते हैं, जो सब भूले भटके जीवों को वहां पर स्वीकार किया जाता है। जितने भी जीव भटके हैं, भूले हुए हैं, वो सबको वहां पर एक्सेप्ट करते हैं और सबको पॉलिश करते हैं और कृष्ण के चरणों में डाल देते हैं। राधा रानी कैसे खड़ी है गोपीनाथ जी में, ऐसे खड़ी, तो उनको सबको राधा रानी जब सिफारिश करती है तो कोई कृष्ण भगवान उसको नकार नहीं सकते, कृष्णा कैनॉट रिजेक्ट। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मन की तैयारी करो, क्योंकि ब्रज में जाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आप जा सकते हैं, लेकिन बरसाने में पहुँचना इतना आसान काम नहीं है। ब्रज में, सब ब्रज में और बरसाने में क्या अंतर है कि सब ब्रज में सब लोग कृष्ण की चरणों की रज लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण के चरणों की रज अवेलेबल है, तो सब देवता ऋषि ध्यानी तपी सब लोग वहाँ पर आते हैं कृष्ण के चरणों की रज देने के लिए। लेकिन कृष्ण कहाँ जाते हैं, अपने लिए, कृष्ण अपने लिए रज लेने के लिए बरसाने जाते हैं, क्योंकि लाडली जी वहाँ पर घूमती रहती हैं बिना चप्पल पहने हुए, अपने तलुओं को रज को स्पर्श देते हुए घूमती रहती है, तो उनके चरणों की रज की अभिलाषा लेकर लाडली जी वहाँ और हमारी कन्हैया जी वहाँ जाते हैं, श्याम सुंदर जी वहाँ जाते हैं। दैट इज द ओनली प्लेस इन द होल यूनिवर्स, इन द होल क्रिएशन, दैट श्री कृष्णा गोज टू टेक द डस्ट ऑफ राधा रानी फॉर हिज ओन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, फॉर हिज ओन वेलफेयर ही गोज देयर। केवल जाते नहीं वहां पर रज लेने के लिए, उस रज में लोट पोट भी हो जाते हैं, उनके चरणों में अपने मोर मुकुट को निकाल कर रखते हैं, उनके चरणों को अपने आंखों के आंसुओं से धोते हैं, अपना शीश उनके चरणों में रखते हैं, और उसके बाद में उन चरणों के नीचे जो धूल है उसमें लोट पोट हो जाते हैं। ही रोल्स इन द डस्ट अंडर द फीट ऑफ राधा रानी। जयदेव गोस्वामी लिख रहे थे, उनको दृष्टांत हो रहा था कि राधा रानी रूठी हुई है, कृष्ण भगवान चरणों में गिर रहे हैं, मोर मुकुट चरणों में समर्पित कर रहे हैं, तो वो लिख नहीं पाए। ही कुडंट जस्ट टॉलरेट इट, कैसे कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, तो छोड़ दिया उन्होंने लिखना, एकदम स्ट्रेस आउट हो गए वो। पत्नी को बोला, पद्मावती जी मैं जरा, दिमाग मेरा गर्म हो गया बहुत, मैं भी गंगा जी में जाके स्नान करके ठंडा करके आता हूँ, फिर सोचता हूँ मैंने क्या देखा और क्या लिखना है मुझे, मैं जो देखा वो मुझे अभी टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तक मैं एसिमिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैंने देखा दृष्टांत में उसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक, तो लिखूंगा कैसे। तो गए गंगा जी में और कुछ ही मिनटों में लौट के आए, बोले पद्मावती बहुत भूख लग रही है, जल्दी खाना लगाओ, तब भी लगाती हूँ। और इतने में अंदर गए और जो पंक्ति अधूरी थी उसको पूरा किया कि हाँ कृष्ण भगवान राधा रानी के चरणों में गिर रहे हैं, अपने मोर मुकुट को समर्पित कर रहे हैं। बाहर आए, पद्मावती ने बड़े प्रेम से भोजन खिलाया, बड़े प्रेम से भोजन किया, बोले मैं दोबारा जाके आता हूँ, और फिर चले गए। चले गए तो दोबारा लौट के आए और बोलते हैं, पद्मावती जी बहुत भूख लग रही है, जल्दी खाना खिलाओ। तो पद्मावती के स्वामी क्या हो गया आपको, अभी तो खा के चले गए आप। बोले मैं तो कब से गंगा जी किनारे बैठा हूँ, दिमाग पर हाथ लगा के बैठा हूँ, क्या लिखूँ क्या लिखूँ। तो पद्मावती ने बताया, आप आए और आप अंदर गए और आपने कुछ लिखा, फिर आप आए अपने भोजन किया। तो जयदेव गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य, वो अंदर चले गए तो देखा तो क्या, मोतियों जैसे अक्षरों में वो श्लोक पूरा कर दिया गया था, जो लिखने में जयदेव जी को बड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, संकोच हो रहा था, तो वो आकर ऐसे भाव विभोर होकर गिर पड़े। बोले पद्मावती, पद्मावती तुम बड़े भाग्यवान हो, साक्षात कृष्ण श्याम सुंदर जी आए थे तुम्हारे हाथ से भोजन करने के लिए, अंदर लाके दिखाया उनको, देखो ये मेरा अक्षर है और ये नीचे का अक्षर देखो, कितने सुंदर मोतियों जैसा अक्षर है, इसमें ये श्लोक पूरा किया गया है, श्याम सुंदर जी ने स्वयं आके अपने हाथों से लिखा है कि हाँ मैं राधा रानी के चरणों में गिरता हूं, समय समय पर गिरता हूं, कृपा याचना करता हूं, प्रेम याचना करता हूं, रति याचना करता हूं, याचना करके या भिक्षुक बन के जाता हूं। ऐसा ये दरबार है राधा रानी का। और हम लोग सब साधना करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, कोई राधे कृष्ण महायुगल मंत्र बोलते हैं, कोई श्री राम जय राम बोलते हैं, बहुत सारे नाम भगवान के बोनाफाइड नाम हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा कहते हैं, वो हमारी साधना है। जैसे हमारे गुरु देते हैं मंत्र वैसे हम जपते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो, हाँ यमुना किनारे बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, हृदय के आंगन में राधा रानी के दो चरणों पर ध्यान करते हैं और होठों से राधे 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 पुकारते हैं। ये उनका साधना है। जैसे हम साधना करते हैं वैसे कृष्ण भी साधना करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। धन्यादि धन्य पवनानी, अपने आप को धन्य मानते हैं वो ये नाम जपने के लिए। ये उनका इष्ट है, ये उनके आराध्य है, ये उनकी साधना है। तो ये रहस्य की बात है। बरसाना ये ब्रज का अंतःपुर है। इट इज अ इनर चेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कृष्णा, दैट इज वृंदावन। द इनर चेंबर इज राधा रानीज हाउस। वहां पर सब लोग नहीं आते हैं, सब लोगों को प्रवेश नहीं होता है, बाकी सब देवी देवता बहुत दूर से चले जाते हैं। बरसाने में केवल उनको ही प्रवेश है जो राधा रानी के कृपा पात्र हैं। बरसाने में केवल वही जन्म लेते हैं जो राधा रानी के कृपा पात्र हैं। और वहाँ जन्म लेने के बाद में दोबारा कोई जन्म लेता नहीं है, वो उनका आखिरी जन्म है। भले वो उस जन्म में अपराध करेंगे तो वापस वही जन्म लेंगे, कुत्ता बिल्ली सुअर बंदर बन के, लेकिन जन्म वही लेंगे और वहीं से गोलोक जाएंगे। इतनी बड़ी छत्र छाया राधा रानी की। तो आइए दिल को थाम कर, हृदय को थाम कर प्रवेश करें। हाँ, जहाँ स्वयं लोटपोट होते होते कृष्ण आते हैं, वहाँ हम भी आ रहे हैं। हाँ, तो हमें भी लोटपोट होते आना है। अरे अक्रूर जी महाराज तो जमुना जी के पास ही लोटपोट हो रहे थे कृष्ण के चरणों का चिन्ह देखकर, और जिनका चरणों का चिन्ह देखकर वो लोटपोट हो रहे थे, वो स्वयं इधर लोटपोट होते होते प्रवेश करते हैं बरसाना में। बड़ा मुश्किल है समझना ये। जब तक हमारे मन के अंदर के सारे कलमश, भौतिक वासना, हाँ जन्म जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर, ये जब ये सारे चार चार पांच पांच चीज़ें जो है ना, जो हमको फंसाती है यहाँ पर, जन्म ऐश्वर्य श्रुति और श्री जो हमको फंसाती है, उनका जब तक आवरण और प्रभाव नष्ट नहीं होता है, तब तक ये रहस्य की बात खुलती नहीं है। ये बरसाना बहुत रहस्यमय धाम है। यहाँ पर जो होता है ना वो इतना उत्कट है, इसलिए यहाँ पर राक्षसों को भी प्रवेश नहीं दिया है। कंसा यहाँ पर आकर गोपी बन गया, कंसनी गोपी मोटरली गोपी बन गया। 6 महीने तक उसके हाथ से कंडे लिपवाए, बताओ इतनी शक्ति है राधा रानी के अंदर। तो यहाँ कृष्ण भी स्वयं सखी बनकर प्रवेश करते हैं, ऐसा ये धाम है। बाकी सब जगह पर अपना पुरुष शरीर लेकर डोलते हैं, बाकी सारे ब्रह्मांड में भगवान बनकर डोलते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं ना सब कुछ छोड़ना पड़ता है उनको, अपनी भगवत्ता, अपना सार्वभौमत्व, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और वो ऐसा नहीं कि वो मजबूरी से छोड़ते हैं, बहुत कष्ट होके छोड़ते हैं, वो तो हृदय से छोड़ते हैं, प्रेम से छोड़ते हैं उसको, हैप्पीली रिनाउंसिंग। राधा रानी के प्रेम के सामने, कृपा के सामने कुछ भी छोड़ने को भगवान तैयार है, सब कुछ छोड़ देते हैं। मांगू मैं तेरी राधा रानी एक कृपा की नजरिया, मांगू मैं तेरी राधा रानी एक कृपा की नजरिया। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ये कौन कह रहे हैं? ये शंकर भगवान ने लिखा हुआ है और लिखकर पार्वती जी को भेंट दिया है। तो मुझे विनती है गोपाल दास गांगरडे को कि अपना टीवी बंद कर लीजिए। तो टीवी आपने इधर सामने लगा के रखा है सबके दर्शन करने के लिए। तो ये सब सोचना जरूरी है कि हम कहाँ हैं, क्या सुन रहे हैं, कहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। यही चीज़ हमको अटकाती है यहाँ से बरसाने में प्रवेश करने के लिए। हाँ, सुबह मैंने कहा था आपको, मैंने मैसेज भी भेजा होगा शायद, कि सबसे बड़ा कष्ट जो है मन का है। ये मन जो है वो मानता नहीं है। हाँ, ये मन ही सबसे बड़ी जड़ है। मन बोलता ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। मन चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म। इतना प्रमाथी है ये, इतना प्रमोद, इतना प्रमाद से मस्त है कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए। जब तक ये मन वश में आता नहीं ना, तब तक बरसाना वृंदावन सब भूल जाओ। ये तो फिसलन पहाड़ी है, तुरंत फिसल के गिरा देगी नीचे। जब मन कृष्ण के चरणों में आ जाएगा, राधा रानी के चरणों में आ जाएगा, तब फिर कुछ बात बनती है मनुष्य जीवन की। मनुष्य जीवन कहलाने लायक कुछ बात बनती है, जिसके लिए ये जन्म दिया है वो कुछ बात बनती है। हमें सब लोगों को मनुष्य बनकर जीना है, उसके बाद भक्त बनकर जीना है, बाकी तो कुत्ता बिल्ली बनकर सब लोग जीते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो आइए इन कुछ चंद शब्दों के साथ में हम प्रयास करते हैं जाने का बरसाना धाम में। यही वो विग्रह है जिसका कृष्ण पूजन करते हैं। हाँ, ये राधा का नाम जो है, राधा नाम बड़ा सुखदाई, राधा नाम बड़ा सुखदाई, राधा नाम बड़ा सुखदाई, राधा नाम बड़ा सुखदाई। ये कृष्ण के हृदय को आनंद देता है, ये कृष्ण का विग्रह है जिसको कृष्ण सदा जपते रहते हैं। और ये वृंदावन का भी विग्रह है। हाँ, तो इन राधा रानी के चरणों को वंदन करते करते अंदर आइए। क्योंकि राधा रानी ही कृष्ण की स्वामिनी है, कृष्ण के हृदय की संजीवनी है। कृष्ण अगर प्रेम का सागर है तो राधा रानी नवनीत है, उस सागर का नवनीत। प्रेम सागर में निकाला हुआ, मंथन करके निकाला हुआ नवनीत राधा रानी है। राधा रानी कृष्ण को मुरली सिखाती है, नृत्य करना सिखाती है। उनका सारा अस्तित्व जो है ना, वो राधा रानी के ऊपर निर्भर रहता है। कहते हैं कृष्ण सुंदर दिखते हैं जब वो राधा रानी के साथ रहते हैं, और जैसे ही उससे अलग हो जाते हैं तो निस्तेज दिखाई पड़ते हैं। दो कारण उसके हैं, एक तो तेज उनसे प्राप्त करते हैं इसलिए तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं जब उनके साथ में रहते हैं, एक कारण तो वो है। और दूर जाने से तेज नहीं मिलता है तो निस्तेज हो जाते हैं। और दूसरा कारण यह है कि राधा संग होती है तो ही वो खुश रहते हैं, इसलिए तेजस्वी दिखते हैं। दूर जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, तो इसलिए निस्तेज हो जाते हैं। तो ऐसी रहस्य की बातें ना सुखदेव जी को पता थी, लेकिन सुखदेव जी ऐसे प्रेमी थे राधा रानी के कि नाम नहीं ले पाए उसका। उनको पता था कि नाम लेंगे तो 6 महीना बेहोश हो जाएंगे, शारण मासी मूर्छा, ये उनकी अवस्था थी। इसलिए पूरे भागवत में कई वर्णन नहीं किया, उनके नाम का उच्चारण नहीं किया। देखिए आप, तो ये धाम जो है ना बहुत ही पावरफुल धाम है। यहाँ पर पहुंचने के बाद कृपा ही कृपा है। देखिए कैसे प्रेम से राधा रानी कृष्ण को मुरली सिखा रही है। ये बरसाने का मैप है, तो हम आपको भी थोड़ी सी कहानी बताते हैं इतिहास के रूप में। ब्रह्मा जी ने अपने पहले सत्ययुग में 120,000 साल तपस्या किया, उसके बाद में कृष्ण ने दर्शन दिया उनको और कहा जाओ क्या चाहते हो। ब्रह्मा जी ने कहा आपके चरणों की धूल चाहते हैं। अरे जाओ, वृषभानो परम गत्वा ममो परिक्रीड़ा करिष्यसि, वहां पर हम आपके सर पर कीड़ा करेंगे, आप वृषभानु चले जाओ, वृषभानुपुर चले जाओ। तो वहां पर ब्रह्मा जी जाके पत्थर बने हुए हैं, ब्रह्मा जी पत्थर बने हुए हैं, अपने आप को सर्वोच्च पद से सबसे न्यून पद पर लेके आए। ये हमारे आचार्य हैं, इनका आदर्श देखिए आप। सर्वोच्च पद होने पर भी सर्व से सबसे जो न्यूनतम जो पोजीशन है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सभी साधारण समझ के बाहर की बातें हैं, इसलिए बार बार विनती करते हैं, कृपा के बिना कुछ समझ में नहीं आता है, संतों की कृपा होनी चाहिए। और भगवान भी कैसे, देखो राधा रानी भगवान कैसे हैं, सारे जितने रहस्य हैं ना उसकी चाबी संतों के पास देके रखी है, वो जिनको देना है दे लो, संत संत जिन पर कृपा करते हैं वो सब चाबी उनके लिए खोल देते हैं, सब रहस्य खोल देते हैं। तो ये चार पर्वत है, देखिए वरस्यानु मतलब बरसाने का शोभा क्या है, बहुत सुंदर पर्वतों की चोटियां यहाँ पर है, पांच चोटियां हैं, एक चार तो ब्रह्मा जी का मुख है, एक मोरकुटी है। इसका इतिहास ऐसा है कि मैंने आपको वो सती अनसुया का कहानी बताई कि नहीं बताई, सती अनसुया कहानी बताई, यस और नो?
नहीं प्रभु,
नहीं बताई। तो स्वर्ग लोक में चर्चा हो रही थी कि सबसे बड़ी सती कौन है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों को लगा हमारे सिवा कौन हो सकता है, हमारे नाम आएगा है ना, तो तीनों ने कहा कि नहीं स्वर्ग लोक में नहीं है। तो उन्होंने कहा कहाँ है फिर, बोले पृथ्वी लोक पे है। तो कौन है, बोलते अत्रि मुनि की पत्नी जो अनसुईया है ना वो सबसे महासती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन उनको लगा कि अगर ऐसी कोई पृथ्वी पर श्रेष्ठ माता है तो उसका गौरव होना चाहिए, उसका सतीत्व जो है ना वो प्रकट होना चाहिए, इट शुड बी मैनिफेस्टेड, इट शुड बी ओपन टू एवरीबडी, इट शुड नॉट बी अ सीक्रेट। तो कहते आप जाओ उनकी परीक्षा करो। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आए हैं साधु का भेष लेकर, और अत्रि मुनि के घर पे भिक्षा देने के लिए आए, भवती भिक्षान देही। तो कुछ देर के बाद में आई बाहर और उनको भोजन करने के लिए बुलाया, तो कहते हैं कि हमारी एक शर्त है, हम भोजन करेंगे आपके घर पे, लेकिन आपको नग्न होकर भोजन खिलाना पड़ेगा। तो वो समझ गई कि इसमें कुछ चाल है, तो वो अपने अंदर गई और अपने पति की सुबह की सेवा का जो जल था कमंडल वो लेके आई, उसका जल इन तीनों पर छिड़का, तो छिड़कते ही ये तीनों नग्न बालक बन गए, छोटे से रेंगते हुए। फिर छोटे से रेंगते हुए नग्न बालक के सामने नग्न होने में कोई परेशानी नहीं होती है, तो फिर वस्त्र उतार कर उनको खाना खिलाया, बहुत प्रेम से खाना खिलाया, गोद में बिठा कर खिलाया। तो वो लोग इतने आसक्त हो गए इनके वात्सल्य से, और बच्चे ही बनकर वहीं रह गए, वो वापस नहीं गए। बहुत दिनों बाद में पत्नियां परेशान हो गई, अरे हमारे पतिदेव चले गए थे इधर परीक्षा लेने के लिए, कहाँ गए, एग्जामिनर गायब हो गए परीक्षा हुई कि नहीं पता नहीं चल रहा है, तो पता था कहाँ गए। इसलिए तीनों पत्नियां जो है वो अत्रि मुनि के आश्रम में आती है और अनसुया से पूछती है माता जी हमारी पत्नी पति किधर है, तो कहते वो देखो वहाँ खेल रहे हैं तो रेंगते हुए बालक खेल रहे हैं। तो पत्नियों को बड़ा विरह हो गया, उन्होंने कहा कि अरे माता जी हमारे पत्नियों पतियों को फ्री करो आप। तो वापस कमंडल लेके आई और कमंडल लेकर फिर जड़ छिड़का उनके ऊपर, तो तीन बालक जो है वापस ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। तो बड़े प्रसन्न थे वो, बड़े माता आपके वात्सल्य में रहते हुए इतना आनंद आया ना जाने का दिल नहीं कर रहे हैं, हम आपसे वरदान चाहते हैं कि हम वास्तव में आपके गोद से पुत्र बनना चाहते हैं, आपके पुत्र के रूप में आपके गोद से जन्म लेना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो ब्रह्मा जी चंद्र देवता के रूप में जन्म लिए अनसुया के पेट से, विष्णु जी दत्तात्रेय बने उनके गर्भ से, और शिव जी भगवान दुर्वासा मुनि बने उनके गर्भ से। तो ये तो वरदान हुआ, लेकिन माता थोड़ा सा नाराज भी थी, पर तुमने आकर हमारे सतीत्व का परीक्षा लिया तो आपको शाप देते हैं, आप तीनों पर पत्थर हो जाओगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी पत्थर बने बरसाने में, शंकर जी पर्वत बने नंदगांव में, और विष्णु जी पर्वत बने गोवर्धन के रूप में। ये सती का शाप था उनको, लेकिन भक्तों का शाप कभी शाप नहीं होता है, वरदान ही होता है, तीनों तरफ से उनको कृपा ही कृपा मिली, नंदगांव में नंदीश्वर महादेव को ब्रह्मा को बरसाने में और विष्णु जी को गोवर्धन में कृपा ही कृपा बरसा हुए हैं उनके ऊपर। जहाँ जहाँ साधु शाप देते हैं ना, कभी शाप नहीं, वो वरदान के रूप में उसका रूपांतर होता है। जहाँ जहाँ देखो आप, नल कुबेर मणिग्रह को शाप दिया तो देखो कितना बड़ा कृपा हो गया उनके ऊपर। कितने राक्षसों को शाप दिया, किसी को अजगर बना दिया, किसी को क्या शकट बना दिया, किसी को बैल बना दिया, लेकिन सबका गोलोक धाम में उद्धार हो गया। तो ऐसा ये इतिहास है। और सूर्यवंश में राधा रानी का जन्म हुआ है, चंद्रवंश में कृष्ण का जन्म हुआ है, वृषभानु महाराज सूर्य के अवतार हैं, और बहुत सुंदर इतिहास है उनका। बरसाने का राज्य जो है वो रशंग राजा ने बसाया था, और रशंग राजा जो है वो सूर्यवंशी राजा हैं। उनके पूर्वज अभय कर्ण हुए, उनके पूर्वज रघु राजा हुए, रामचंद्र प्रभु भी उनके पूर्वज हैं, दिलीप राजा भी उनके पूर्वज हैं, सगर राजा भी उनके पूर्वज हैं। सगर के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र रघु राजा के पुत्र वंश में प्रभु रामचंद्र, फिर उसके वंश में अभय कर्ण जी, फिर रशंग राजा, और फिर मही कुंज भानु जी, फिर मही भानु जी, और उसके बाद में 9 पुत्र हुए उनको, और बीच वाले पुत्र सूर्य के अवतार थे वृषभानु महाराज। तो ये 9 पुत्र जो है, ये 9 गांव में रहे, एक बरसाने में, और 8 गांव में 8 पुत्र रहे भैया लोग, और हर एक को एक एक पुत्री हुई, एक एक पुत्र हुआ। तो एक एक पुत्री जो हुई है वो राधा रानी की अष्ट सखियां बनी, फर्स्ट कजिन्स ऑफ राधा रानी। ऐसा सुंदर इतिहास है राधा रानी का। परिवार में माता जी का नाम कीर्तिदा है, पिताजी का नाम वृषभानु है, बड़े भैया का नाम श्रीदामा है, छोटे बहन का नाम अनंग मंजरी है। एक बड़े भैया हैं, एक छोटी बहन है, सुंदर परिवार है। और इनका इतिहास क्या है, वो 3 महासतियाँ थी, हाँ 3 महासतियाँ थी, जो एक बार वैकुंठ में गई विष्णु को मिलने के लिए। लेकिन विष्णु जी को मिलने के पहले उनको वो 4 कुमार नजर पड़े उधर, 4 कुमार मतलब अब जो सालों के वृद्ध संत थे वो, लेकिन 4 साल के उम्र का शरीर बना के रखा था उन्होंने काम वासना से दूर रहने के लिए। इसलिए वो लगते थे कि नंगे बालक घूम रहे, तो उनको सहसा कोई दंडवत करता नहीं था। तो ये 3 महासतियों ने, वो पितरों की महासतियाँ थी, वो 3 महासतियों ने उनको प्रणाम नहीं किया, तो उन्होंने शाप दे दिया कि आप मानवी बन जाओ, आप यहाँ से वैकुंठ से जाकर पृथ्वी में मानवी बनो। अभी हम लोग यहाँ पर मानव बन के बहुत आराम से जी रहे हैं, लेकिन स्वर्गवासी लोगों के लिए और वैकुंठवासियों के लिए मानव बनने का आदेश प्राप्त होना मतलब बड़ा, सबसे बड़ा शाप है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ऐसे दुनिया में मानव बनकर जीना बहुत कष्ट की बात है, जहाँ पर हम लोग सब लोग बड़े आराम से जी रहे हैं। तो बड़ा दुख हुआ उनको, अरे पृथ्वी पर जाने का शाप दे दिया। उतने में विष्णु बाहर भाग भाग के आए, बोले मैयाओं ये शाप नहीं है, ये वरदान है, ये मेरी इच्छा थी, इसलिए आपको ये मैं वरदान दे रहा हूँ कि आप जाकर मेरी जो 3 नीचे महासतियाँ हैं जो आने वाली हैं उनका, उनकी माता बनोगे आप। तो ये यथावकाश ये 3 महासतियाँ पृथ्वी पर आई। एक बनी पार्वती की माँ मैना, एक बनी सुनैना सीता की माँ, और एक बनी कलावती जो आगे जाकर कीर्तिदा बनी। हाँ तो कलावती का विवाह सुचंद्र से हुआ। कलावती जो है ना वो भलनंदन राजा के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी, कान्यकुब्ज यानी आज का कन्नौज के जगह पर भलनंदन राजा के यज्ञ कुंड से ये कलावती उत्पन्न हुई थी। फिर कलावती का विवाह जो था वो सुचंद्र से हुआ। सुचंद्र और कलावती ने 12,000 साल तप किया, तब उनको ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया और बोले क्या चाहते हो। तो सुचंद्र ने कहा मुझे मोक्ष दे दो, तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। तो जब भी ब्रह्मा जी ने सुचंद्र को मोक्ष का आशीर्वाद दिया, कलावती बहुत क्रोध में आई, तो ब्रह्मा जी डर गए, प्लीज नोट दिस पॉइंट, ब्रह्मा जी डर गए, क्योंकि महासती से ब्रह्मा भी डरते हैं। उन्होंने कहा कि आपने मेरे होते हुए पति को मोक्ष कैसे दिया, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे विरह होगा तो उसका क्रोध कौन सहन करेगा। तो डर गए ब्रह्मा जी, बोले अरे माफ करता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, आप है ना अभी से लेकर द्वापर के अंत तक मेरे लोक में रहो, अपने पति के साथ में आनंद लो, और द्वापर के 28वें द्वापर के मतलब 28वें द्वापर में वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में जब कृष्ण आएंगे तो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति भी आएंगी, तो उनकी माता बनने का भाग्य आपको प्राप्त होगा और उस जीवन के बाद आपको दोनों को साथ में मोक्ष मिलेगा। ऐसा करके ब्रह्मा ने कैसे भी टाइम मतलब क्या ना बात बना ली अपनी, बाल बाल बचे शाप मिलते मिलते। तो वो कलावती जो है वो अगले जन्म में इंदुसेन गोप और मुखारा देवी इनके कन्या के रूप में जन्म लिया, कीर्तिदा देवी नाम से। और ये मुखारा देवी मुखाराई गांव से थी और ये उधर उनका जन्म हुआ। तो कीर्तिदा का विवाह नंद महाराज के मध्यस्थी से वृषभानु महाराज से हुआ और ये दोनों मित्र थे नंद महाराज वृषभानु महाराज। ये उनका और एक इतिहास है, तीन महासतियों का और कौन सा इतिहास है। तो ये चार जो पर्वत वाले मुख है, शांडिल्य मुनि कहते हैं कि ये वर सैन्यु यानी बहुत सुंदर सुंदर चोटियां हैं ये पहाड़ों की, जिसमें चार शिखरों पर चार गढ़ों का नाम है। एक है, देखिए आप जरा गौर से देखिए, दूर दूर तक आपको ये चार पहाड़ मिलेंगे, बहुत सुंदर नजारा है, बहुत ही सुंदर। और ये है मोरकुटी और उसके पीछे विलासगढ़, मैं आपको परिचय करा दूंगा। ये है राधा रानी का महल जिसको कहते हैं भानुगढ़, हाँ ये है भानुगढ़। देखिए ऐसा दृश्य आजकल बहुत विरल हो गया है, वर्षा होती नहीं, कभी होती तो ऐसा दृश्य आता है। तो ये है भानुगढ़ जहाँ पर एक शीश पर वृषभानु महाराज ने अपना महल बनवाया था, जहाँ पर वो रहते थे। दूसरा है ये दानगढ़ जहाँ पर दान बिहारी रहते हैं। यह है विलासगढ़ और यह है मानगढ़ और ये पांचवा है मोरकुटी। तो ये सुंदर दर्शन जो है वो बरसाने में है। देखिए सूर्यास्त के समय कितना सुंदर दर्शन है श्री जी के महल का, भानु महल का। राधा रानी का महल का दर्शन करो। और यह है बरसाना धाम, श्री बरसानो धाम जय जय श्री राधे, श्री बरसानो धाम जय जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। प्रणाम करो, ये सब भाग्यवान लोग हैं जो बरसाने में रहते हैं, राधा रानी के कृपा पात्र हैं, यहाँ जन्म लेते हैं। देवता लोग उनको चतुर्भुज रूप में देखते हैं, ऑलरेडी डिलीवर्ड जीवन मुक्त रूप में देखते हैं उनको। तो वृषभानुपुर को प्रणाम करते हैं। ओम क्लौं वृषभानुपुर अधिबनपतये राधा कृष्णाय स्वधाहा, राधाय संहितं कृष्णं ब्रह्म पर्वत संस्थितं, वंदे प्रदक्षिणानां सांग सर्वदा वरदायकम्। ये बरसाने का मंत्र है, ये ब्रज भक्ति विलास में दिया गया है। वृषभानुपुर को जो अधिबन के रूप में आता है, चार प्रकार के बन होते हैं, वन अधिबन उपवन और प्रतिवन, और कुल मिलके 137 वन सब प्रकार के मिलकर होते हैं। उसमें से 108 वन भगवान को बड़े पसंद है, उसमें से 12 वन पसंद है, और 12 वनों में से श्री वृंदावन पसंद है, और श्री वृंदावन के अंदर नंदगांव बरसाना जावट गोवर्धन यमुना सब विराजमान है। तो ऐसे जहाँ पर ब्रह्म पर्वत संस्थितम स्थापना कर चुका है, राधा कृष्ण को लीला करने की भूमि है ये, इसलिए हम उनको वरदान वंदन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। सर्वदा वरदायकम, सबको वर देने वाली भूमि है ये। तो ये ब्रह्मा जी का प्रणाम करना बहुत जरूरी है। पर्वत पे चढ़ने के पहले सबसे ब्रह्मा जी को पहले प्रणाम करो, हमारे संप्रदाय के सबसे पहले आचार्य हैं वो, लेकिन वहाँ पर पत्थर बनकर बैठे हुए हैं। और राधा रानी का दर्शन करना है तो इनके सर पर पाँव रखकर हमको जाना होगा, तो इसलिए हमको उनको पहले प्रणाम करना है कि हम आपको प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं आपसे, कि वादा करते हैं कि हम पर्वत पर चढ़ेंगे आपके शीश पर, एक ही कारण से चढ़ेंगे, राधा रानी का दर्शन करने के लिए, राधा रानी की कथा सुनने के लिए, राधा रानी की सेवा करने के लिए, किसी प्रकार का इंद्रिय भोग करने के लिए हम ऊपर नहीं जाएंगे और ना करेंगे, ये प्रार्थना करके ऊपर जाएंगे। प्लीज फॉरगिव मी फॉर क्लाइंबिंग ऑन यू, यही प्रार्थना है। मैं एक तृण के पत्ती से भी अधिक नम्र बनना चाहता हूं, आप मेरे अहंकार को ठेच दो, अहंकार को छोड़ने के लिए मदद करो, रजोगुण को तमोगुण को छोड़ने का शक्ति दे दो, और सखी भाव दास्य भाव सेवा भाव को अंगीकार करने का भाग्य दो मुझे आप, क्योंकि तो बरसाने में कोई भी रजोगुण और तमोगुण लेके प्रवेश नहीं कर सकता है। बरसाना धाम ये राधा रानी का धाम है, यहाँ पर शहरों का और परदेशों का और देशों का भाव लेकर जाए जा सकते हैं। ये कृष्ण भगवान भी सखी बनकर जाते हैं। सखी बनने का मतलब क्या है? शरीर बदलने का मतलब नहीं है, सखी भाव का मतलब है दास्य भाव, दास 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 अनुभाव अनुदास ये भाव होना चाहिए। तो इसकी मांग कीजिए, पहले ही सिद्धि पर मत्था टेकिए और प्रणाम कीजिए, फिर ऊपर चढ़े हम लोग, वंदन कर कर चढ़े हैं। यहाँ पर राधा रानी के चरणों का दर्शन है, ये जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है ना, इसके बिल्कुल नीचे राधा रानी के चरणों का चिन्हों का दर्शन है। फिर हम ऊपर आते हैं तो ये लेवल पे क्या है, ये संगे मरवर की छतरी है, मार्बल टेम्पल, ये एक लेवल नीचे है मंदिर से। साल में 3 बार राधा रानी यहाँ पर आती है, हरियाली तीज, होली और राधाष्टमी। तो हरे कृष्णा, तो ये 3 दिन राधा रानी का विग्रह नीचे आता है। आप देखिए यही मंदिर है वो, यहाँ पर राधा रानी नीचे आती है और यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और मेन दरबार में प्रवेश करते हैं। ये राधा रानी का मंदिर है, जगमोहन मंडप, इसके आगे बहुत राधा रानी विराजमान है। ये और पास में आ गए लेकिन मंदिर में फोटो निकालना मना है, इसलिए फोटो नहीं निकाल सकते हैं, फिर भी आपको दर्शन होगा। देखिए दर्शन कीजिए राधा रानी और लाडली जी के, लाल लाडली और लाल, लाडली लाल की जय हो। बहुत अद्भुत दर्शन है, बहुत दुर्लभ दर्शन है, देखिए देख लो। अभी सबसे हृदय को थाम के बैठो, अभी देखो क्या दिखने वाला है आपको, राधा रानी के चरण कमल, वो भी 2020 साल के राधाष्टमी के दिन के अभिषेक के समय है। मन याद करो, मन याद करो, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण याद करो, यही हमारे जीवन का सर्वस्व है, कृष्ण के जीवन का भी सर्वस्व है, राधा रानी के चरणों को याद करो, जय हो। वही राधा रानी का मुख कमल है, बहुत दूर से दिखाई पड़ता है। इस बार कोरोना में ऐसी कृपा हो गई कि राधाष्टमी के दिन इतने नजदीक से फोटो निकाला गया और उनका अभिषेक का भी वीडियो आया। हाँ, बहुत सारे छेद वाला मटका, उसमें से अभिषेक करते हैं उनको, उसका भी दर्शन मिला। ललिता जी के भी जन्मदिन पे उनका अभिषेक का दर्शन मिला, वीडियो, बहुत कृपा हुई इस साल। सब लोग प्रणाम करो, ये बहुत दुर्लभ दर्शन है, पता नहीं अगले साल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस साल तो मिल गए राधा रानी के दर्शन। नमः प्रियाय राधायै ब्रह्मणो वरदायिने सर्वेष्ट फल रम्याय राधा कृष्णाय मूर्तये। राधे ओ राधे ओ कृपामयी राधे, आपने ब्रह्मा जी को इतना बड़ा वरदान दिया है, आप सारे पूजा सारी तपस्या सारी साधना का फल आप हो, आप हम पर कृपा कीजिए। नमः प्रियायै राधायै। आरती भी ले लो, मंदिर में पहुंच ही गए हो तो आरती ले लो। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। तो मंदिर में एक तो राधा रानी का दर्शन है और दो सखियां भी है, ललिता विशाखा है, लाडली लाल है। एक बात बताना भूल गया मैं आपको, देखिए यहाँ पर एक चुनरी जो है ना, वो राधा रानी भी ओढ़ी हुई है। हाँ देख रही है, देखिए ये चुनरी जो है ना, ये चुनरी ये राधा रानी की है, और ये जो बड़ी चुनरी है ना, ये चुनरी ये कृष्ण की चुनरी है। देखो यहाँ से यहाँ ओढ़ के रखी है, ये कृष्ण को सखी बनाने का प्रूफ है, ये चुनरी जो है वो कृष्ण के ऊपर सखी बनाने के लिए उड़ के रखी हुई है, ये देखना बहुत जरूरी है। राधा रानी के पास में कृष्ण कौन से भाव में रह रहे हैं, तभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलते ही परिक्रमा में जाएंगे तो पीछे मंदिर के पीछे राधा रानी के चरण चिन्ह हैं वहाँ पर, वहाँ वो खड़ी होकर कृष्ण को इशारे करती हैं। वो फोटो हमारे पास नहीं है लेकिन मंदिर के पीछे दर्शन है ये, जब वो इशारे करती थी तो पत्थर पिघलता था ब्रह्मा जी का, तो उनके चरण चिन्ह वहाँ बने हुए हैं। अभी हम मंदिर के बाहर आ गए और हम अभी दानगढ़ की ओर जा रहे हैं। देखिए दानगढ़ की ओर जाते हुए रास्ता में एक सुंदर स्थान आता है, देखिए क्या लिखा है, राधा रानी का प्राकट्य स्थल। ये जो हमने विग्रह देखा ना अभी, वो बज्रनाभ ने बनाया था, बज्रनाभ ने बरसाने को स्थापन करते समय लाडली लाल का विग्रह बनाकर प्रस्थापित किया था। यथावकाश वो लुप्त हो गया, ब्रह्माचल में लुप्त हो गया, ब्रह्माचल के पत्थर में लुप्त हो गया। तो 400 साल पहले नारद जी ने अवतार लिया नारायण भट्ट गोस्वामी के रूप में, उनको राधा रानी ने स्वप्न दिया और कहा कि मैं इस पत्थर के अंदर हूँ, मुझे निकालो। तो यही वो जगह है जहाँ से राधा रानी का विग्रह नारायण भट्ट जी ने प्रकट किया था। तो नारायण भट्ट जी ने बहुत ज़्यादा ध्यान करके यहाँ से राधा रानी का विग्रह प्रकट किया। तो इस जन प्राकट्य स्थल को आप प्रणाम करो, प्राकट्य स्थल को आप हृदय से प्रणाम करो और आगे बढ़ो, फिर हम इस मंदिर में आएंगे। ये मंदिर जो है इसको बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से एक एक चित्रपट बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना। देखो कैसे मंदिर बनाया है, पर्वत पर हाथी पर पत्थर लाद लाद के लाकर कई सालों में बनाया है। देखो कितना बारीक काम किया है, 400 वर्ष के पहले बनाया गया है, आज भी उसकी अवस्था इतनी सुंदर है। ये देखिए कैसे दरवाजे बने, कम से कम 100 कमरे बनाए हैं इसके अंदर। एक एक खिड़की को देखो, वहां के काम को देखो, पत्थर में जो कला दिखाई है वो कला को देखो, फिर देखो झरोके कैसे बनाए हैं, फिर देखो एक एक बारीक बारीक, एक हाथी है, घोड़ा है, हाँ तुलसी का वृंदावन देखो कितना सुंदर बनाया है। इतना बड़ा प्रेम से बनाया वो मंदिर, किस लिए बनाया था, ये राजा ने बनाया था, सवाई माधो सिंह, सदा सवाई माधोपुर, जो अपना रेलवे का एक स्टेशन भी है वेस्टर्न रेलवे में, ये इनके नाम पे बनाया है, इनका नाम है सवाई माधो सिंह। इन्होंने राधा रानी का मंदिर को जीर्ण होते हुए देखा, सोचा कि दानगढ़ पे जगह है तो वहाँ पर मंदिर बनाया जाए और राधा रानी के विग्रह को वहाँ स्थापन की जाए। तो बहुत साल तक डिजाइन बनाया, बहुत मेहनत से, बड़े प्रेम से, धन मन तन लगाकर इतना सुंदर मंदिर बनाया और कल के दिन राधा रानी के विग्रह वहाँ से उठा के यहाँ लाने हैं और प्रस्थापित करने हैं। तो आज के रात को इनको स्वप्न आता है और राधा रानी कहती है स्वप्न में आकर कि मैं वहाँ से यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि वो मेरा निज धाम है, मेरे पिताजी का घर है, मैं वहीं रहती हूँ, मैं वहाँ से छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती। तो इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आपको नहीं आना था तो पहले क्यों नहीं बोला, हाँ इतना मेहनत किया हमने इतने साल तक, तभी सपने में आकर तभी बोलते, हम मेहनत बंद कर देते, ऐसा उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। उन्होंने राधा रानी के आनंद के लिए मंदिर बनाया था और अगर राधा रानी का आनंद अपने घर में रहने में है तो उनको भी उसमें आनंद था, उनको यत किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ कि मैंने इतना मेहनत की और राधा रानी ने उसको नकार दिया। राधा रानी की इच्छा जो है ना सब सर आंखों पर होती है। तो उन्होंने वहां पर दूसरे विग्रह लगाए, उसका नाम था राधा कुशल बिहारी जी, उसका फोटो हमारे पास नहीं है लेकिन ये मंदिर के अंदर उनका विग्रह है, नए विग्रह बिठा दिए। तो यहाँ पर क्या आपको प्रार्थना करनी है, बहुत बड़ी उत्कट जगह है ये, बहुत ही अंतरंग जगह है, निस्वार्थ सेवा करना चाहिए भगवान की। ऐसा नहीं कि मैंने मंदिर बनाया तो राधा रानी को आना ही चाहिए नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, मुझे निस्वार्थ भाव से सेवा करने दो, ऐसे प्रार्थना करना है। मेरी इच्छा कभी भी आपकी इच्छा के ऊपर जाना नहीं चाहिए, आपकी इच्छा ही हमारी सराखों पर होनी चाहिए हमेशा। माई डिजायर शुड नेवर प्रिवेल ओवर प्लीजिंग यू, और आपका आनंद यही मेरे जीवन का सर्वस्व होना चाहिए। सम सिद्धिर हरि तोषणम, सम सिद्धिर राधा तोषणम, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये प्रार्थना यहाँ पर करना है दानगढ़ पे आपको और आगे चलना है। आगे चलेंगे तो ये जगह आएगी, और ये जगह क्या है, दान बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ पर झूलन स्थली है, यहाँ पर रास मंडल है, यहाँ पर ललिता का कुआं है जो कृष्ण भगवान ने बनाया था। जब रास में यहाँ पर ललिता गोपी को प्यास लगी थी तो पत्थर में कुआं बनाया था और मीठे पानी को पैदा किया था और ललिता जी को जल पिलाया था। तो देखिए कितना सुंदर स्थान है ये, देखिए ऊपर से देखिए रास मंडल और झूला दोनों एक साथ में हैं। इस जगह पर श्री कृष्ण भगवान गिड़गिड़ा कर प्रेम की याचना करते हैं, रति का दान मांगते हैं, इसलिए इसको दानगढ़ कहा गया है। हाँ, राधा रानी के सामने नतमस्तक होकर प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। तो ये दान बिहारी का दर्शन है, राधा दान बिहारी जी महाराज। दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए और मंत्र बोलिए, प्रार्थना कीजिए कि जैसे कृष्ण ने यहाँ पर प्रेम की भिक्षा मांगी है, हम भी आपको प्रेम और सेवा की भिक्षा मांगते हैं। और ये भी वरदान मांगते हैं कि कभी भी कृष्ण के लिए दान मांगने में हमको शर्म नहीं आनी चाहिए, कभी भी कृष्ण के लिए दान मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए। जैसे हम भी हमारे बरसाने के अस्पताल के लिए खुलेआम भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के लिए मांगते हैं, खुद के लिए नहीं मांगते। तो यहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण की सेवा में दान मांगने के लिए संकोच नहीं होना चाहिए। और ये जो यहाँ पर दान की लीलाएँ हुई हैं वो सदैव मेरे हृदय में प्रकट होती रहे, ऐसे हमको याचना करनी है। और आपके दान लीला में अगर मुझे कोई थोड़ी सेवा मिलती है तो मैं इच्छुक हूँ उस सेवा को करने के लिए, आपकी लीला में सहायता करने की मेरी इच्छा है, ऐसी प्रार्थना कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये रास्ता है, यहाँ से जाता है वो विलासगढ़ की ओर। ये विलासगढ़ है, यहाँ पर भी झूला है, रास मंडल है, देखिए बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था है। यहाँ पर राधा और कृष्ण बड़ा आनंद लेते हैं और विलास लीलाएँ करते हैं, विलास की लीलाएँ लीला विलास करते हैं, रास खेलते हैं, झूला झूलते हैं। यहाँ पर राधा रानी को वृंदावन की रानी के रूप में दरबार में बिठाया था, उनको छत्र भी धारण कराया था, रानी बनाया था और एक चोर को पकड़ के लाया था चोरी के इल्ज़ाम में, श्याम सुंदर जी को। फिर ललिता जी न्यायाधीश बनी थी, जज बनी थी, और ललिता जी के निर्देश में उसका मुकदमा चला, फिर राधा रानी ने उसको माफ़ करके छोड़ दिया। ये लीला विलासगढ़ में हुई है। यहाँ पर कोई ज़्यादा आदमी पहुँच नहीं पाता है, यहाँ बड़ा एकांत है। वैसे अभी अभी रास्ता बना है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जाते नहीं वहाँ पर, लेकिन बहुत सुंदर जगह है ये। ये रास मंडल बना हुआ है, ये विलासगढ़ का मन वन है। और तो विलासगढ़ को प्रणाम करते हैं। विलास रूपिणे तुभ्यम नमः कृष्णाय ते नमः, सखी वर्ग सुप्ताय क्रीड़ा विमल दर्शिने। हे विलासगढ़, आप सखियों को आनंद देने वाले हो, कृष्ण को आनंद देने वाले हो, आप बहुत बहुत पवित्र हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे विलासगढ़ को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं मोरकुटी पे। हाँ, तो मोरकुटी पे क्या होता है, मोरकुटी पे राधा कृष्ण जो है मोर बनकर नाचते हैं। तो इसकी कथा हम आपको मानगढ़ के ऊपर जाने के बाद बताएंगे, लेकिन विशेष बात यहाँ की यह है कि ये चित्रपट ही यहाँ पर विग्रह के रूप में उसका पूजन होता है। ये चित्रपट जो है ना, इसी को ऑल्टर में रखा गया है, इसी को श्रृंगार करते हैं, इसी को माला पहनाते हैं, इसी को भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर ना एक अंधे बाबा थे, बड़े सिद्ध बाबा थे वो, एक सिंह उनका शिष्य था। वो सिंह के गले में झोली लटका कर भेजते थे। वो सिंह बेचारा मानपुर जाकर भिक्षा करके लाता था रोटी, और अपने गुरु के पास लाता था। भाई गुरु महाराज उनको खुद भोग लगाते थे इन फोटो को, और खुद रोटी पाते थे और बचा हुआ रोटी सिंह पाता था। ऐसा अद्भुत गुरु शिष्य का नाता था। तो राधा रानी एक बार सपने में आई बाबा के, अंधे बाबा थे वो। राधा रानी सपने में आई और बोली कि उन्होंने सपने में तो पहला मोर लीला दिखाया पूरा, कि राधा रानी मोर बनी, मोरनी बनी हुई है, कृष्ण मोर बने हुए हैं, नृत्य कर रहे हैं मोर बनकर, और ये चित्रपट भी दिखाया उनको, मतलब लीला में दिखाया। और बाद में कहा कि मेरे लीला का चित्रपट बना दो आप। तो अंधा बाबा बोला सपनों में, मैं तो अंधा हूँ, मैं क्या बनाऊँगा। तो राधा रानी बोलती है कि मेरी कृपा से सब बना सकते हो आप, चिंता मत करो, आप बना दो। तो उन्होंने अंधे बाबा के हाथ से ये चित्रपट बनवाया राधा रानी ने, और ये चित्रपट अभी वहाँ विराजमान है। फिर हम आगे जाते हैं, देखिए ये लीला है यहाँ की, राधा और कृष्ण मोर बनकर नाचते हैं, बहुत सुंदर। तो वहां से हम मान मंदिर आते हैं, ये मान मंदिर मंदिर की सीढ़ियां हैं, चौथा गढ़ है, चारों गढ़ में से सबसे उत्कट, सबसे क्या कहते हैं, ओवरवेलमिंग जो रहस्यमय लीला है वो सब यहाँ पर होती है। इन सीढ़ियों पर चढ़कर हमको ऊपर जाना है और फिर हम मंदिर में पहुँचेंगे, मंदिर के गेट में पहुँचेंगे, अंदर जाएंगे तो राधा मान बिहारी जी का दर्शन होगा, राधा मान बिहारी लाल। तो हम लोग यहाँ पर प्रणाम करेंगे, मान मंदिर को प्रणाम करेंगे, देव गंधर्वाय रम्याय राधा मान विधायिने मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमये। राधा रानी ने यहाँ पर मान किया इसलिए इसका नाम मान मंदिर पड़ा। देवता और गंधर्व भी यहाँ पर आकर बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, मैं बड़े प्रेम से आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते रत्न भूमये, ये रत्न की भूमि है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। देखिए बहुत ही बहुत कारणों से राधा रानी रूठती है, मान करती है, लेकिन उनका मान हमारे क्रोध जैसा नहीं है, हमारा क्रोध जो है वो स्वार्थमय होता है, राधा रानी का मान जो है वो कृष्ण के लिए होता है, कृष्ण के प्रेम की वृद्धि करने के लिए होता है। टू इंक्रीज द लव फॉर कृष्णा शी बिकम्स अपसेट, हाँ, इट इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड एंगर जैसे हमारा होता है। तो कभी फिर गोपी बनकर रह जाते हैं, कभी मोर बनकर रह जाते हैं, कभी चरणों में गिर जाते हैं, राधा रानी को देखो नृत्य करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर राधा रानी रूठी हुई है और ललिता देवी कृष्ण भगवान के हाथ में, राधा रानी का हाथ मिलाने का प्रयास कर रही है। शी इज ट्राइंग टू पैसिफाई राधा रानी एंड यूनाइट राधा एंड कृष्णा। लेकिन राधा रानी इतनी रूठी हुई है कि मान नहीं रही है, उनको इंटरेस्ट नहीं है कृष्ण का हाथ मिलाने में। तो इतने में ये बहुत लंबी कहानी है वैसे, लेकिन ये कैसा है ना, पहले नीचे बैठती है, फिर ललिता जी आके समझाती है तो और ऊपर चढ़ती है, फिर कृष्ण के पास आके ललिता बोलती है कि नहीं मान रही है, तो कृष्ण बोलते हैं जाओ जाओ मनाओ उसको, तो दोबारा जाती है तो और ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे बार 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 होता है। तो ललिता जी कहती है अरे कृष्ण भगवान तुमने तो हमें चौगान की गेंद बना दिया, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी तो यहाँ तो वहाँ, वो वहाँ से ठुकराती है तो आपके पास आ जाते हैं, आप यहाँ ठुकराते तो वहाँ चले जाती है, मतलब फुटबॉल की तरह बना दिया आपने, चौगान की गेंद बना दिया, और लास्ट में सबके चोटी पर जाके बैठ जाती है। इसके बाद, इस दृश्य के बाद ललिता देवी कृष्ण के कान में कुछ बोलती है और कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं और ललिता भी चले जाती है। उसके बाद मोर कुटी, जहाँ पर आपने मोर कुटी का दर्शन किया ना, वहाँ पर एक मोर आता है और वो सुंदर नाच नृत्य करने लगता है, और ललिता कहती है अरे राधा रानी देखो कितना सुंदर मोर आया है, तो राधा रानी इतनी रूठी हुई है कि वो मोर को देखने को तैयार नहीं है, तो बहुत मनाते हैं उसको, अरे कम से कम मोर को देखो, वो तो चला गया, जिस पर उठ गई तुम चला गया, वो अभी उधर नहीं है, वो अभी मोर का नृत्य देखो आप। तो फिर मुड़ जाती है, मोर को देखती है, मोर को बड़ा आनंद होता है, राधा रानी देख रही है, तो मोर बड़े प्रेम से नृत्य करता है और प्रेम से करता है और प्रेम से करता है, फिर झूम झूम कर राधा रानी आनंद करती है। तो फिर राधा रानी इतनी आनंद में आती है तो स्वयं जाकर वहां पर ज्वाइन हो जाती है और मोरनी बनकर नृत्य करती है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना उधर, मोरनी बनकर नृत्य करती है, बहुत सुंदर नृत्य करती है, बहुत देर तक करती है। उसके बाद में जब बहुत पास में आती है मोर की, तो पता चलता है कि मोर वोर नहीं है, वो तो कृष्ण है, श्याम सुंदर है, तब तक तो गुस्सा उनका उतर गया होता है। तो ऐसे मोर बनकर नाच कर कर राधा रानी को रिझाते हैं। तो मोर कुटी में बहुत सारी लीला होती है, कभी राधा रानी अपने मोरनियों को लेकर आती है, कृष्ण मोर को लेकर आते हैं और दोनों के मोर मोरनियाँ नाचती हैं, कभी कृष्ण मोर का श्रृंगार करते हैं और नाचते हैं, राधा रानी मोरनी का श्रृंगार करके नाचती हैं, कभी कृष्ण मोर बन जाते हैं, राधा रानी मोरनी बन जाती हैं और नृत्य करते हैं। ऐसे विविध प्रकार की मोर लीलाएं रोज यहाँ पर होती है, हाँ, एक लीला नहीं है, नित्य लीला का स्थान है ये। तो जब राधा रानी रुठती है तो कभी कभी कृष्ण उनके चरणों का मालिश भी करते हैं, ये वास्तविक मान लीला है। ये सूरदास जी ने, हरिदास स्वामी ने, इन सब ने गाई है, लीला बड़ी उत्कट है। तो यहाँ पर क्या प्रार्थना करना चाहिए कि हमें मिथ्या अहंकार से मुक्त कर दीजिए। हमारी जो भी भावनाएं हैं वो सब कृष्ण के आनंद के लिए होनी चाहिए। हमारा मान भी है तो वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। और अगर हमारे मान को कुचलने का समय आता है तो कुचलने में हिचकिचाना मत। हम तैयार हैं, हम आपके चरणों में हैं। अगर आपको हमारे मान को, हमारे सम्मान को कुचलना है तो आप कुचल सकते हैं। आश्लिष्य वा पादरताम विनष्ट माम अदर्शनन मर्महताम क्रोधुआ, जो चाहे व्यवहार वो कर सकते हैं। पास बुलाओ दूर भगाओ, मैं सब विधि शरण तिहारी, मैं आपके शरण में हूँ, आप जैसा चाहे व्यवहार ऐसे कर सकते हो। तो इसी रास्ते पर हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी यहाँ पर चले थे, तो उनको दिव्य साक्षात्कार हुए थे और यहाँ से वो मान मंदिर गए थे। और मान मंदिर में उन्होंने अपने आप को 6 महीने निवास दिया था। तो गुरु महाराज को इनका संग प्राप्त हुआ था, रमेश बाबा जी महाराज का, और 6 महीने इनके संग में रहे। उस समय वहाँ पर डाकू रहा करते थे और डाकू लोग वहाँ पर अपना चोरी का सामान छुपा के रखते थे। इनके ऊपर कई बार बंदूकें तानी तानी गई थी, चले जाओ यहाँ से गोली मार देंगे। तो उन्होंने कहा था, अरे मरने के लिए तो आए हैं, मारना चाहे तो मार दो, जो मरने के लिए आता है वो डरता नहीं मरने से। तो आखिर में डाकू लोग चले गए, ये वहीं बस गए। भक्ति का मतलब निर्भयता, जो भगवान के चरणों का सहारा लेता है वो तो निर्भय हो जाता है, वो तो कभी ऐसे बंदूकों से डरता नहीं है। जिन्होंने श्री जी के चरणों का सहारा लिया है वो तो डाकुओं के बंदूक से क्या डरेगा। हाँ, जिनका जीवन श्री जी के हाथ में है वो डाकुआ को कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा आश्रित जीवन होना चाहिए। ये राधा आश्रित जीवन जो है वो सर्वोत्तम जीवन है। तो इनके संग में 6 महीने बिताए, उस 6 महीने के संग में बहुत बड़े साक्षात्कार हुए। और तभी राधानाथ महाराज ने यहाँ से निकलते समय मन ही मन में वादा किया था कि एक दिन बरसाने के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। तो इसी का फल है हमारा बरसाना का आई कैंप, जो जब से सबसे पहले उसका निवेदन आया था उसी समय उसको सम्मति मिली थी 1992 में। और तब से रमेश बाबा जी महाराज की प्रेरणा से और गुरु महाराज की आज्ञा से निरंतर आँखों का कैम्प यहाँ चल रहा है और ब्रजवासी को सेवा में क्या कहते हैं उसको, निःशुल्क काम चल रहा है, फ्री ऑफ चार्ज। और ये वो परिवार है, इनमें से ये दीदी लक्ष्मी दीदी अभी भी है और वे उनको उम्र 65 साल है, तभी वो बालिका थी जब महाराज जी वहाँ पर 6 महीना रुके थे 1971 में, 71 में। अब अगले साल उसको 50 साल पूरे हो जाएंगे, साक्षात्कार होने के बाद 50 साल। हाँ, तो इनके घर में वो रोटी भिक्षा करते थे हमारे महाराज जी, लच्छो दीदी। और वो कहते हैं लच्छो दीदी के हाथ की रोटी खाना यानी सबसे बड़े परम भाग्य की बात है। और हमारा भी ये भाग्य है, हमने भी इनके हाथ से कई बार रोटी पाई है महाराज जी के साथ में। हरे कृष्णा। तभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, वो वीडियो राधा रानी के मान करने की जगह को दिखाता है। हाँ, तो आप जरा देखिए उसको ध्यान से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता नहीं वो ऐन मौके पे कैसे गायब हो जाता है, नहीं मिलेगा तो बाद में दिखा देंगे, कोई बात नहीं। राधा नाम बड़ा सुखदाई, राधा नाम बड़ा सुखदाई। चलो कोई बात नहीं, बरसाना 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 मान मंदिर। ये देख लो। दिख रहा है क्या? दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो जगह है, ये जगह पर राधा रानी जाकर बैठी थी रूट टूट कर, तो वो गुफा के अंदर है, तो उसका ये वीडियो आपको मैंने दिखाया। हरे कृष्णा। फिर उसके बाद में हम मान मंदिर से, देखो यहाँ से निकले, मान मंदिर से निकले और यहाँ से हम लोग अभी ऊपर से देख रहे हैं मान मंदिर से दोहनी कुंड। ये दोहनी कुंड जो है, यहाँ पर वृषभानु महाराज अपनी गायों का दुग्ध दोहन करते थे और इस कुंड में इकट्ठा करके रखते थे। हम लोग अपने घर में 2 लीटर 3 लीटर का दूध पात्र में रखते हैं और यहाँ पर हजारों और लाखों गायों का दूध निकाल कर कुंड में रखते थे। हाँ, एक कुंड इतना बड़ा है, आपको दिखा नहीं पड़ रहा होगा शायद, पूरा भक्ति वेदांत अस्पताल इसके अंदर बैठ जाएगा, इतना बड़ा और गहरा और चौड़ा है ये। उसमें लाखों गायों का दूध निकाल कर रखते थे। दोनों कुंड में लाल रंग की, नीले रंग की, गुलाबी रंग की, हाँ पीले रंग की, सफेद रंग की गायों का दोहन करते थे। रक्त नील सित धूम्र पीत गोहो गोदोहन प्रद वृषभानु कृतस्तीर्थ नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम प्रसिद्यते नमस्तुभ्यम प्रसिद्धमे। वृषभानु महाराज ने यहाँ पर अपने अनेक रंग बिरंगी गायों का दूध निकाला। ये बहुत ही पवित्र जगह है और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर इसके आगे आएंगे साकरी खोर में। ये चार चीजें हैं वृंदा बरसाने में, चार चीजें, खोर साकरी गहबर गलियां। हाँ क्या कर, चार चीजें हैं। एक खोर है यानी कि अरुंद नालियां, मतलब बहुत छोटी छोटी पतली पतली गलियां, साकरी गली कहते हैं उसको। फिर एक है खिरक यानी जलाशय, वाटर पॉन्ड्स। तीसरा है गिरी यानी सुंदर चोटियां, और चौथा है गहबर बन। ये चार चीजें बरसाने की खासियत है, खोर खिरक गिरी और गहबर, ये चार चीजों से बरसाना बना हुआ है। तो उसमें से पहला चीज है खोर साखरी गली। यहाँ पर राधा रानी की छतरी है और ये साखरी गली इस तरफ लेफ्ट साइड में बरसाना है, राइट साइड में नंदगांव है। यहाँ पर नंदगांव में, नंदगांव से कृष्ण आते हैं सखाओं को लेकर, राधा रानी सखियों को लेकर बरसाने से आती है। लेकिन ये जो साखरी गली है इसके अंदर एक दिशा में एक समय एक ही व्यक्ति जा सकता है। 2 people cannot go together, एक व्यक्ति एक दिशा में एक समय, दैट्स ऑल। तो ऐसे नैरो जगह पर कृष्णा एक तरफ से आते हैं, राधा रानी अलग तरफ से आती है और कृष्णा उनको रोकते हैं और यहाँ पर दान लीला होती है। ये दान लीला का दर्शन करते हुए ब्रह्मा जी जो पत्थर बने हुए हैं पिघल जाते हैं। हाँ तो यहाँ पर बहुत सुंदर लीला है। हर रोज यहाँ पर आकर राधा रानी को कृष्ण रोकते हैं। तो एक कहानी मुझे याद आ रही है, वो है चुटिया बंधन की। तो हर रोज राधा रानी को यहाँ पर आके कृष्ण तंग करते हैं। तो तो एक दिन राधा रानी और कृष्ण सोचते हैं कि अभी इनको सबक सिखाना चाहिए। तो क्या करते हैं, उस दिन जब आते हैं और रास्ता रोकते हैं तो बिना किसी झगड़े के, बिना किसी वाद विवाद से तुरंत कह देते हैं कि आज आपको हम अपना मीठा मीठा दही और दूध देने वाले हैं, जाके दोना लेके आओ। तो ये दोहनी कुंड में गए, वहाँ पर तो दोने वाले कदम हुआ करते थे, तो वहाँ पर जब ये पेड़ पे चढ़कर दोना बिनने में बिजी हो गए तो इनकी चोटियाँ जो हैं सब गोपियों ने पेड़ से बांध दी और ये लोग अटक गए, अरेस्ट हो गए। हाँ, तो इसी को कहते हैं चुटिया बंधन लीला। तो जब ये चुटिया बंधन हो गया उनका और जब नीचे उतरने का प्रयास किया तो समझ गए चुटिया बांध दी गई, अभी कैसे उतरेंगे। तो पुकारने लगे, कृष्णा बलराम जल्दी आ जाओ, हमको छुटकारा करो। तो आमतौर पर जब कृष्ण बलराम को पुकारते ना तो कृष्ण बलराम भाग के आते हैं और इनका उद्धार करते हैं, उनको बचाते हैं। इस बार रिस्पांस में आवाज़ आया, मधुमंगल सीतामा बचाओ बचाओ, यानी कृष्ण बलराम स्वयं पुकार रहे हैं। कैसे पुकार रहे हैं और क्यों पुकार रहे हैं, क्योंकि बरसाने में राधा रानी के प्रेम के सामने सब लोग विवश हैं। बाकी सब जगह वृंदावन में बुलाते ही जाते हैं, कभी आगासुर का वध करते हैं, बकासुर का वध करते हैं, कभी अरिष्टासुर का वध करते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं, लेकिन वही पराक्रमी परम पुरुषोत्तम भगवान बरसाने में आकर असहाय हो जाते हैं। तो सब ग्वाल वाल परेशान हो गए, अरे हमने पुकारा तो तुम भी पुकार रहे हो, कैसे क्या हालत हुई तुम्हारी, अरे हमारी ससुर जी, अरे ससुर जी, ऐसे बोल रहे हैं मधुमंगल को, अरे ससुर मेरी भी चुटिया बंद पड़ी है, हाँ मेरी भी चुटिया बंदी पड़ी हुई है, क्या करें। तो फिर गोपियाँ आती हैं और डांटती हैं उनको, तो गिड़गिड़ाते हैं, छोड़ो छोड़ो। तो बोलते हैं एक शर्त पे छोड़ेंगे आपको, कल आपको यहाँ पर सखियों का बेश बन के आना पड़ेगा, तब जाकर हम आपकी मटकी फोड़ेंगे, हम सखा बनकर आएंगे। तो फिर अगले दिन यहाँ पर ना राधा रानी जो है वो कृष्ण बनकर आई है और कृष्ण जो है राधा रानी बनकर आए हैं, और राधा रानी ने डंडे से कृष्ण का मटका फोड़ा है और उनके माखन खाया है। कई बार ऐसे भी हुआ है कि आते ही कृष्ण जो है गुस्ताखी करते हैं और उनका मटका फोड़ देते हैं, और वो ब्रह्मा जी पिघल रहे हैं ना लीला को देखते हुए, तो जब ये हाथ से खाते हैं ना, ऐसे हाथ से चाट कर गिरा हुआ मक्खन खाते हैं, तो हथेले का भी चिन्ह वहाँ पर आया हुआ है, वो चिकना शिला भी वहाँ पर है, सफ़ेद रंग की शिला है वो जहाँ पर मक्खन गिरा था, आज भी सफ़ेद है, आज भी चिकना है, और हाथ के भी चिन्ह है, हाथ हथेली से खाया हुआ है चाट चाट के। फिर एक बार कृष्ण को अरेस्ट किया था उन्होंने, कैद किया था कृष्ण को, उसका फेटा छुड़ा दिया था, तो फेटे का भी चिन्ह है, वो फेटे को खींच के लेके जा रहे हैं ना, तो वो पिघलते हुए पत्थर पर फेटे के भी चिन्ह आए हुए हैं। ऐसा ही अद्भुत स्थान है, बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत स्थान है। तो देखिए यहाँ पर ये चित्रपट देखिए कैसे कृष्ण खड़े हैं, लकुटी को रास्ता में टेढ़ा खड़े करके खड़े हैं, ललिता जी आगे आकर झगड़ा कर रही है, गुलाबी रंग वाली साड़ी पहने हुए राधा रानी खड़ी है, सहमी सहमी सी खड़ी है, और नीचे मटका जो टूटा हुआ है ना, राधा रानी के सर पे मटका था वो गिरा दिया है और मक्खन खा चुके हैं, फिर झगड़ा चल रहा है उनका। तो यही वो जगह है जहाँ पर मटका गिरा था, बहुत चिकना चिकना पत्थर है, ये सफ़ेद रंग का पत्थर है। तो इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं, देखिए इस स्थान को हम प्रणाम करेंगे, हाँ क्या उसका अर्थ है कि यहाँ पर गोपियाँ हमेशा आती जाती रहती है, इस जगह पर हमेशा वाद विवाद चलते रहता है, ऐसे स्थान पर जहाँ गोपियाँ आती जाती रहती है मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। क्या कहते हैं, दधि भाजान शीर्षास्ता गोपिका कृष्ण रुंदिता, मतलब जो शीश पर मटकी लेकर आते हैं उनको कृष्ण ने रोक के रखा है, रुंदिता तासाम गमा गमा स्थानों, वैसे उस गमा गमो यानी आने जाने वाले स्थान को मैं नमश्चरित, नित्य नमश्चरित, नित्य उसको मैं प्रणाम करता हूँ जिस पर गोपियां आती जाती रहती हैं। तो उसके आगे हम गहवर वन में चलते हैं, देखिए ये गहवर वन राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया है, श्री जी के मंदिर से चिकसोली गाँव तक जितना भी वन है राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है। तो ये हाथ से बनाया है, उसको सिंचन किया है, उसको पानी दिया है, बचपन में राधा रानी और कृष्ण भगवान इन वेलियों के साथ पेड़ों का विवाह करते थे, बड़े वृक्षों का वेलियों के साथ विवाह करते थे अपने बाल लीला में, और इतना सघन वृक्षावली यहाँ पर है, बहुत सुंदर जगह है यहाँ पर। तो ये गहवर वन का सौंदर्य देखो आप, नाम गहवर का मतलब क्या होता है? अति उन्माद, प्रेम का उन्माद है ये। ये यहाँ पर बहुत गहरा और उच्च कोटि का प्रेम प्रकट होता है, इसलिए उसका नाम गहवर कहा गया है। गहवर वन, जहाँ प्रेम का गहवर होता है, उस वन का नाम गहवर वन रखा गया है। तो देखिए, इस गहवर वन के बीच में एक कुंड है, इसका नाम गहवर कुंड है, या राधा सरोवर, राधा सर भी कहते हैं उसको। तो इसमें रोज सवेरे राधा रानी अपने 64 सखियों के साथ में स्नान करती हैं। और मोरकुटी से लिया हुआ फोटोग्राफ है ये नेचुरली, तो मोरकुटी से सब ग्वाल वाल लड्डू फेंकते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं जब वो स्नान करती रहती है। ऐसा ये गैबर कुंड है, बहुत सुंदर, देखते हैं आप कितना सुंदर है इसका। तो गैबर वन को प्रणाम करते हैं। गहवराख्याय रम्याय कृष्ण लीला विदायिने गोपी रमण सौख्याय बनाय च नमो नमः। हे गहवर वन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो जुगल जोड़ी को, गोपियों को आनंद देने वाला है। यत्र गहवरकम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम नित्य केली विलासेन निर्मितम राधया स्वयं। हे सुंदर गहवर वन, यहाँ पर तो अनंत लीलाओं का, प्रेम भरी लीलाओं का सागर है। राधा कृष्ण यहाँ पर प्रेम भरी लीलाओं को करते हैं, राधा रानी ने स्वयं इसको बनाया है, ऐसे वन को मैं प्रणाम करता हूँ। ये गहवर वन देखिए, बहुत सुंदर गहवर वन है, बहुत ही गहरा है ये, बहुत गहरा। यहाँ पर हमारे आई कैंप में हर साल हम लोग दीपोत्सव करते हैं, इसके किनारे को साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और अपने हाथ से दीप दान करते हैं, और रात को 2 घंटा दीप के प्रकाश में भजन और कीर्तन प्रवचन करते हैं। देखिए, हर कैंप में हमारे एक रात को यहाँ पर सेवा होती है, दीपोत्सव। यहाँ पर देवता भी आकर कृतार्थ हो जाते हैं, गंधर्व भी आनंद प्राप्त करते हैं। देव कृतार्थ रूपायै श्री राधा सरसे नमः त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। देवता गंधर्व भी आपके अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, यहाँ पर आपका संतुष्टि प्राप्त करते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। तीनों लोकों को शुद्ध करने की शक्ति आप में है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे गहवर कुंड, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ये वो जगह है जहाँ पर मधुमंगल को एक बार उन्होंने पकड़ लिया था और बहुत पीटा था, उसके बाद में मधुमंगल ने शाप देने का धमकी दिया था, तो यहाँ पर फिर मधुमंगल को बिठाकर लड्डू खिलाए थे। ये भी गहवर कुंड के किनारे में है। बहुत लंबी कथा है, बहुत अच्छी कथा है, लेकिन हम आपको शायद कल बताएंगे, मुझे याद करना उस बात को। तो ये जो सिंहासन है, यहाँ पर मधुमंगल को बिठाकर सभी गोपियों ने पूजन किया था, लड्डू खिलाए थे। फिर मधुमंगल ब्राह्मण ने सभी गोपियों को मन वांछित पति पाने का आशीर्वाद दिया था। तो मेरे विचार से अभी हम यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि पीली पोखर बहुत लंबी कहानियां हैं। तो हमको पहले, मैं आपको ये मधुमंगल कहानी बता देता हूँ, फिर कल से हम पीली पोखर का आरंभ करेंगे। तो ऐसा था कि हमारे कृष्ण कन्हैया गोपियों के घर जा जाकर हमेशा चोरी करते थे, और सारी गोपियां जाकर कंप्लेंट किया करती थी यशोदा मैया को, और यशोदा मैया कहती थी, अरे कैसे मानूं मैं तुम जो बोल रही हो, मैं तो उनको आकंठ भोजन करा के भेजती हूँ, कंठ तक उसको माखन भर के भेजती हूँ, वो ना ना करता है तब तक खिलाती हूँ, और मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम्हारे घर में आके चोरी करके खाता है। अगर खाता ही है, तुम अगर कह रहे हो, तुम सच कह रही हो, तो तुम कभी कभी उसको रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ। तो भी गोपियाँ जो हर साल हर बार जाकर कंप्लेंट करती हैं, तो हर बार यशोदा उनको ताना मारती है कि तुमको अगर बताना ही है तो एक बार उसको रंगे हाथ माखन हाथ मुंह में लगा हुआ पकड़ के लेके आओ, तो मैं मानूंगे कि तुम सच कह रही हो। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, एक बार एक प्रण बनाया कि हम लोग ना ऐसा योजना बनाते हैं कि सारे मटकों को ना नीचे करके रखते हैं, एकदम हाथ के हाइट के ऊपर, और घंटी बांध के रखते हैं। घंटी को बोलते हैं जब भी जैसे खाएगा ना जोर से बजना, फिर हम लोग छुपे हुए गोपियाँ भाग कर आएंगे, झपट के सबको पकड़ लेंगे, और इस बार गड़बड़ नहीं करेंगे, किसको पकड़ना है ये पहले से तय करेंगे। एन मौके पे सब लोग किसको पकड़ो को भाग जाते हैं सब लोग, तो अपना टारगेट फिक्स करेंगे कि मुझे भाई कृष्ण को पकड़ना है, तुझे बलराम को पकड़ना है, तुझे मधुमंगल को पकड़ना है, तुझे सुदामा को पकड़ना है, तुझे इसको पकड़ना है, तुझे उसको पकड़ना है, फिर क्या कन्फ्यूजन नहीं है, बस अपना आदमी फिक्स है उसको जाके पकड़ना है। ऐसा तो तय होता है, सब दरवाजे बंद करते हैं, एक दरवाजा खुला रखते हैं, मटकियां नीचे कर देते हैं, घंटी बांध देते हैं, घंटी से बात करते हैं और झाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कृष्ण बलराम आते हैं, सखाओं को लेकर देखते हैं, वाह आज तो बढ़िया आनंद है, कोई चढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम नीचे ला के रखा हुआ है, लेकिन एक गड़बड़ है, इधर घंटी को बांध के रखा है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो घंटी से बात करते हैं, अरे घंटी तुझे क्यों बांध के रखा है यहाँ पर? तो बोले आपकी तो मर्यादा है, जब आप खाते हैं तो हमें बजना पड़ता है, ये आपने ही तो मर्यादा बनाई है। लेकिन घंटी एक काम करना, आज नहीं बजना, मैं जानता हूँ कि मैंने ही तुम्हारी मर्यादा बनाई, लेकिन आज तुमको नहीं बजना है, आज हम खाएंगे आप नहीं बजेंगे, ठीक है ना? बोले हाँ स्वामी जी, आपका आप तो हमारे नाथ हैं, आपकी आज्ञा पालन करना हमारा फर्ज है। तो फिर बोला ग्वाल बालों खा लो खा लो खा लो, सबने फिर नीचे नीचे लटके हुए मटकों में से सब माखन खाया जोरदार से, कोई घंटी वंटी बजी नहीं। कृष्ण बड़े खुश हो गए, बोले अभी तो बढ़िया बात है, अभी तो फ्री हो गए हम। अभी कृष्ण ने लास्ट में हाथ डाला और लास्ट में हाथ डाल के जब मुंह में डाला तो टांग घंटी बजी जोरदार। हाँ तो इतने में गोपियां झपट पड़ी और उनको पकड़ लिया उन्होंने, लेकिन ग्वाल बाल बड़े चुस्त थे, उनको पकड़ लेते ही छूट गए उसके हाथ से और एक के बाद एक के बाद एक के कंधे पर चढ़ते हुए खिड़की से बाहर निकल गए, सब लोग ऊपर से खिड़की से बाहर निकल गए, सब निकल गए, एक बेचारा अटक गया, उसका पेट जो था वो खिड़की से बड़ा था, उसका पेट जो था वो खिड़की से बड़ा था, ऊपर से ग्वाल बाल खींच रहे थे, नीचे से गोपियां पैर खींच रही थी, तो बेचारा धड़ाड़ से गिर गया नीचे, क्योंकि पेट निकला नहीं खिड़की के बाहर। तो अभी सबको एक एक को पकड़ना था, लेकिन सब भाग गए और सबको मिलकर एक ही मिला, तो सबने मिलकर एक को पीटा बहुत, तो चिल्लाने लगा कृष्णा बलराम मधुभंग, कृष्ण बलराम सुदामा सीदामा बचाओ अर्जुन बचाओ। तो कृष्ण बलराम सभी ग्वाल बाल जो खिड़की से कूदकर भाग रहे थे, तो उनको बुरा लगा कि अरे हमारा ब्राह्मण मित्र जो है वो बेचारा अकेला पीटा जा रहा है, तो उसको कुछ करना चाहिए, हमको बचाना चाहिए उसको। तो बिना फिर लौट के आए वो और सीना तान के बोल रहे हैं, अरे गोपियों आपको शर्म नहीं आ रही है, एक ब्राह्मण को मार रहे हो, उसने कहीं जनी तोड़ दिया और शाप दे दिया तो क्या होगा तुम्हारा? इतना में बल प्राप्त होने पर मधुमंगल भी तन के उठा और बोला अभी मैं जनी तोड़ता हूं और तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा विवाह ऐसे बुड्ढे से होगा जिसकी पहले 7 पत्नियां होगी, ऐसे बुड्ढे से आपका विवाह होगा। ये ब्राह्मण का आवेश देकर गोपियां बिचारी भोली भाली डर गई। तो उन्होंने कहा, कृष्ण बलराम ने कहा, तो आपको शर्म नहीं आती, आप ब्राह्मण के बालक को पीटती हो, कैसे हो तुम लोग? तो एकदम डर गई गोपियां, हाँ ये कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर डर गई बहुत, बड़ी सरल हृदय है ना तो डर गई बहुत। तो अभी वो क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को पूछो क्या करना चाहिए। ब्राह्मण बोला, तीना तान के बैठ गए आसन पे, बोले जाओ लड्डू बना के लेके आओ, सब लोग हमको लड्डू खिलाओ, और याद रखना कोई लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि रवा का लड्डू तुम भी बनाओगे ये भी बनाएगी, नहीं चलेगा ऐसा, सब लड्डू अलग अलग होने चाहिए। सब घर पे गए, प्लानिंग किया और ढेर सारे लड्डू लेके आए, अलग अलग के भोग लगाया, आरती किया, पूजन किया उसका यहाँ बिठा कर, और फिर उसने बोला, संतुष्ट होके बोला, अभी मैं आपको शाप नहीं दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा विवाह जो है तुम्हारे मन में जो है उससे ही होगा, ऐसे आशीर्वाद दिया। तो ये यहाँ पर बिठाया, चलो एक लीला हो गई। अगली बार क्या हुआ, वैसे ही प्लानिंग किया, हाँ तो प्लानिंग किया तो कृष्ण को पकड़ लिया, प्रभावती गोपी ने कृष्ण को पकड़ लिया, बस आज यशस्वी हो गई वो, हाथ में भी माखन मुंह में माखन रंगे हाथ पकड़ लिया, तो बड़े खुश हो गई प्रभावती, मतलब काफी दिनों के बाद विजय प्राप्त हुई है, तो इसलिए बड़े सिना तान के चल रहे थे, लेफ्ट राइट नंद भवन की ओर जा रही है, बोला आज नंद बाबा के सामने यशोदा माई के सामने प्रस्तुत करूंगी गुनेगार को, तो बड़ा कस के हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ अभी देखो कैसा है ना, दो प्रकार की गोपियां हैं, एक गोपियां जो है वो बड़ी खुश हैं कि इसको पकड़ा, क्योंकि हमको हमेशा मैया गाली देती है कि तुम झूठ बोलती हो और हम झूठे साबित हो जाते हैं, तो आज कृष्ण को पकड़ गया तो वो गोपियां खुश हैं, और दूसरी गोपियां नाराज हैं कि हमारे कन्हैया को पकड़ा, अरे हमारे कन्हैया को पकड़ा, अच्छा नहीं हुआ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा दो प्रकार के ग्वाल बाल हैं, एक ग्वाल बाल वो है जो हमेशा पकड़े जाते हैं और कृष्ण भाग जाते हैं। तो होता क्या है, खाता वो है और पीटे जाते वो है। तो जो पीटे जाने वाले हैं वो आज खुश है कि अच्छा हो गया, हम हमेशा पीटे जाते हैं, आज इसको पकड़ा पकड़ा गया और ये पीट जाएगा आज। और एक ग्रुप है वो दुखी है क्योंकि वो कृष्ण के साथ मक्खन खा के भाग जाते हैं, तो वो दुखी है कि हमारा सरदार को आज पकड़ लिया है। तो अभी जो दुखी हैं वो रो रहे हैं बेचारे, और जो खुश हैं वो ताली पीट रहे हैं, और जो खुश गोपियाँ वो भी तालियाँ पीट रही हैं, दोनों तरफ खड़ी रास्ता में, और इसको इतना शर्मिंदा करके पकड़ के लेफ्ट राइट करके जा रहे हैं। तो ये कृष्ण जो है ना श्याम सुंदर, वो प्रभावती को बोलता है, मैया मुझे बड़ी शर्म आ रही है, तुम रास्ता के बीच में से मुझे लेके जा रही हो, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, कम से कम मेरे सर पे तुम्हारा घूंघट तो ओढ़ दो कम से कम, ताकि मैं सबको देख ना पाऊँ, वो मुझे देख ना पाए। तो बोला ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, तो अपना घूंघट जो है ना इसके सर पे डाल देती है। तो अभी कैसा है, इसका घूंघट इसके सर पे भी है, इसके सर पे भी है, उस मतलब अपने आंचल में उसको छुपा लिया समझो, और एक हाथ में कसके पकड़ा है, लेफ्ट राइट जा रही है। कुछ देर बाद में अभी चुंदरी के नीचे ना, आंचल के नीचे छुपे हुए ना वो घूंघट के नीचे, तो कहते हैं भैया गोपी, प्रभावती गोपी, कितना कसके मेरा हाथ पकड़ा है। अरे माखन से भी मुलायम मेरा हाथ है, तुमने इतना कसके पकड़ा है, देखो देखो उंगलियां मेरी सूज गई है, सब खून इकट्ठा हो गया है, थोड़ा नेक हाथ तो बदल दो, मैं थोड़ी भागे जा रहा हूं। तो ये भी बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा हाथ पकड़ ले, तुम्हें क्या है। लेकिन वो गोपी इतना आवेश में थी कि मैंने कृष्ण को पकड़ लिया है, हाथ बदलते समय कभी कृष्ण ने उसके हाथ में उसने उसके बेटे का हाथ दे दिया समझ में नहीं आया उसको, अपना हाथ छुड़ा के अपना दूसरा हाथ देने के बदले में उसके बेटे का हाथ दे दिया उसके हाथ में, बेटे को आंख मारी और दे दिया उसका हाथ हाथ में, और नीचे बैठ गए कृष्ण, सब लोग आगे चले गए, सब आगे चलने के बाद बैठा हुआ कृष्ण उठा और भाग गया अपने घर पे, और मैया को बोला, मैया भूख लग रही है, बड़ी भूख लग रही है। तो मैया ने बड़े प्रेम से उसको माखन खिलाया, बोला मैया बड़ी नींद आ रही है, सुला दिया, और सोने के बाद में प्रभावती लेफ्ट राइट करते करते आई, अरे यशोदा दीदी सुना तुमने, तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ा है मैंने, कई दिन से बोल रही थी ना तुम पकड़ के लेके आओ, आ लो तुम्हारे लाला को देखो। तो मैया देख रही है, हाँ गोपी बावड़ी है गई है, हाँ लाला तो सो रहा है घर पे, और ये कह रही कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के लाया, देखो तो सही किसको लाया है। तो घूंघट उतारती है, ये लो तुम्हारा लाला देखो रंगे हाथ पकड़ा है, देखा तो क्या उसका ही खुद का बालक है। एक तमाचा मारते जोर से को जोरदार, हे तू यहां से कहां से आ गया, तू किधर आ गया। तो ऊपर से पीछे से कृष्ण भगवान आते बोलते, मैया कौन आया है शोर कर रहा है। तो फिर वो कह मैया कहती है कि देखो तुम्हारे नाम से डंका पीट रही है कि तुमको रंगे हाथ पकड़ा है, तुम तो सो रहे हो अंदर। तो फिर वो गोपी शर्मिंदा हो जाती है, उसको एक चाटा लगाती है, पूछते तू कहाँ से आ गया, और उसको तुरंत लेके शर्मिंदा होकर जाने लगती है। तो थोड़ा आगे जाती है तो कृष्ण उसको मिलते हैं और क्या बोलते हैं, देखो मैंने कहा था ना छोड़ दो मुझे, आया छोड़ दो, पछताओगे बाद में, तुमने नहीं माना ना, देखो इस बार तो तुम्हारा बालक हाथ में दिया है, अगली बार तुम्हारे पति को तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, फिर मत बोलना, हाँ तुम्हारे खसम को पकड़ा देंगे तुमको। तो ये ऐसे प्रकार की बहुत लीलाएं हैं, एक बार तो लड़के को पकड़ा दिया, एक बार लड़के को नहीं खुद ही पहुंच गए, लेकिन जब भी घूंघट खोल दिया ना तो लड़के का रूप ले लिया उसका, तो लड़के को लेकर आगे चले गई, वापस कृष्ण बन गए। तो क्या बोलते हैं उसको, प्रभावती मैंने कहा था ना मुझे छोड़ दो, मेरे लफड़े में मत आओ आप, ये आपको भारी पड़ेगा बहुत, मत आओ मेरे अंदर आप, छोड़ दो, मैं कह रहा हूं आपको छोड़ दो मुझे, नहीं माना तुमने, देखो अभी अगली बार ना तुम्हारे पति का रूप ले लूंगा मैं, तो तुम्हारे हाथ में पति का हाथ होगा, अब तुम मेरे मैया को बताओगे लो तुम्हारे लाला को पकड़ के लेके आए देखो, और तुम्हारा मुच्छड़ पति आके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत क्या बचेगी, तो कभी मेरी बात माना करो, मैं जब कहता हूं ना छोड़ दो तो छोड़ा करो, इतनी बड़ी समस्या आपको नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारी चटपटी लीलाएं कृष्ण भगवान करते हैं, तो गोपियों को बहुत तंग करते हैं। और ये जगह जो है ना, ये अभी मुझे याद आ रहा है, ये जगह जो है ना, ये जो जगह है गैबर कुंड, इसी जगह पर दुर्वासा मुनि आए थे, और दुर्वासा मुनि ने इसी जगह पर राधा रानी के हाथ से मट्टी खाई थी, हाँ खीर के रूप में खिलाई, राधा रानी बोले खीर खाओ करके मट्टी का पात्र में मट्टी खिलाया, और बोला कि मैंने खीर बनाई है खा लो। तो राधा रानी के मधुर मधुर भाषण से दुर्वासा मुनि बड़े प्रभावित हो गए और वो मट्टी खा ली उन्होंने, तो उनको दिव्य खीर खाने का आनंद मिला। तो दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हाथ से जो भी खाना बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, और तुम्हारे हाथ से जो भी खाना खाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा और सदैव विजयी रहेगा। तीन आशीर्वाद दे दिए, एक तो तुम्हारे हाथ से खाना अमृत से अधिक तुल्य होगा, और जो खाएगा वो रोग से मुक्त हो जाएगा, और वो जो खाएगा वो विजयी रहेगा हमेशा। तो इसलिए ये वरदान जब सुने तो ब्रज में पूरे फेमस हो गए सब जगह पर कि राधा रानी को नारद दुर्वासा मुनि ने वरदान दे दिया, वरदान दे दिया, वरदान दे दिया। तो यशोदा के कान तक आई बात, तो उसने फिर कीर्ति मैया से बुलाया कि तुम्हारी बेटी को हमारे बेटे के लिए खाना बनाने के लिए भेजो। फिर नंदगांव में कुआं बनाया, यशोदा कूप, वहाँ पर रसोई बनाई, और वहाँ पर राधा रानी कृष्ण के लिए रसोई बनाया करती थी, और वहाँ पर पृष्वानु महाराज ने एक महल बनाया था जहाँ पर राधा रानी रहा करती थी, और यशोदा बाई ने एक बाग बनाया था, राधा बाग। राधा रानी को दोपहर को खाना बनाने के बाद में विश्राम करने के लिए एक बाग बना दिया था। साइलेंट करो, साइलेंट। तो ऐसा सुंदर सुंदर लीला जो है इसकी शुरुआत यहां से हुई थी। तो ये बहुत अद्भुत स्थान है, अनंत लीलाएं यहां पर, सब प्रकार के अद्भुत वृक्ष यहां पर हैं। यहां पर पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, कदम का पेड़ है, तमाल का पेड़ है, सब प्रकार के दिव्य पेड़ जो होते हैं ना, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, सब पेड़ यहाँ इसके किनारे में उपलब्ध है। ये बीच गहवर वन के अंदर ये गहवर कुंड है राधा सर, और यहाँ पर राधा रानी अपनी प्रेम प्रिय मीठी मीठी लीलाएं करती हैं। जय जय श्री राधे श्याम।